नेक्स्ट हम लोग कर लें। अगर मैं चाह रहा था कि चार श्लोक ले लेते क्योंकि ये सारे एक सीक्वेंस में है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान रख के पढ़ सकें तो अच्छा रहेगा। अब भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से कर्म फल का त्याग नहीं करता उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए, अनिष्टमिष्टमिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। देखिए, इष्ट का अर्थ होता है जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूं। ठीक है, अनिष्ट का अर्थ क्या हो गया, इसको ऐसे सीधे नहीं ले लीजिए, पहले आप समझिए। इष्ट का मतलब मैंने क्या बताया, ये मैं चाहता हूं। अनिष्ट का मतलब क्या होता है, नहीं चाहता। क्या हम सुनते नहीं समाज में, अनिष्ट हो गया, बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया, मतलब ये घटना हम चाहते नहीं थे, सुनते हैं ना ये। तो अनिष्ट का मतलब नरक, क्योंकि नरक कोई जाना नहीं चाहता। इष्टम का मतलब स्वर्ग, कि लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, यानी कि नरक में दुखी दुख है और स्वर्ग में सुखी सुख है। अब मिश्रम का अर्थ है मानव जीवन, जहां पे सुख भी है और दुख भी है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, आप देखिए, अत्यागी शब्द है, अत्यागी शब्द दिखाई पड़ रहा है कहीं आपको, दूसरी लाइन में दिखा है भवत्य अत्यागी नाम प्रत्यय। जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म फलों का त्याग नहीं करता है उसके तीन प्रकार के फल बन सकते हैं। पाप करेगा तो नरक जाएगा, कर्म तो करना ही पड़ रहा है। पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, या फिर मिक्स में हो सकता हो मानव जीवन प्राप्त कर ले। तो ये कर्म फल त्याग ना करने का नुकसान है, ये अर्थ समझ में आ रहा है। अब वो कह रहे हैं भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य। प्रेत्य मतलब समझते हैं मरने के बाद, प्रेत समझते हैं व्यक्ति, कृष्ण प्रभु व्यक्ति प्रेत कब बनता है, मरने के बाद। तो प्रेत्य अर्थ समझ में आ गया, मरने के बाद इसके तीन प्रकार के फल बनेंगे। अनिष्टम मतलब नरक, इष्टम मतलब स्वर्ग, मिश्रम मतलब मानव जीवन। न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए इस प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, इष्ट का मतलब क्या, स्वर्ग। अनिच्छित अनिष्ट मतलब, तथा मिश्रित मतलब मानव जीवन। ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, सिंपल। ठीक है, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। मतलब कितनी बड़ी सुविधा है सन्यासी का, मतलब हमारे संबंध में सिंपल, कृष्ण के लिए कर्म करना। तो कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है तो ना उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना उसको नरक तो कोई मतलब ही नहीं है, और ना मानव जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। सिंपल, कितना सिंपल सी बात है। ओके, अब मैं टीका पढ़ूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। इस प्रकार का त्याग ना करने का दोष इस श्लोक में वर्णित हुआ है। नहीं, उस पर देखिए, रीड मोर लिखिए, रीड मोर। हाँ, देखिए, जो लोग अत्यागी होते हैं अर्थात कर्म फल को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, अर्थात त्याग नहीं करते जैसा मैंने, मतलब भगवान ने बताया है, तो उनके लिए मृत्यु के बाद अर्थात प्रेत्य तीन प्रकार के फल, नारकीय यातना अर्थात अनिष्ट, मुझे समझा, मैं समझाऊंगा नहीं, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, स्वर्गीय सुख अर्थात इष्टम, या मानवीय जन्म जिसमें सुख और दुख मिश्रित रहता है अर्थात मिश्रम प्राप्त होता है। क्या ये स्पष्ट है, ये मुझे कोई समझाना है, क्लियर है? ओके, यह उसके लिए नहीं होगा जो व्यक्ति मेरे मार्ग यानी मेरी आज्ञा के अनुसार कर्म के फल को त्याग देता है। ये तो अब ये तो समझ में आ रहा है कर्म के फल का मतलब क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, आप रोज कुछ मिठाई बनाते हैं, कर्म करते हैं कि नहीं, उसका फल क्या होता है, मिठाई, फिर क्या करते हैं, कृष्ण को समर्पण, इदम कृष्णाया इदम नमः, ये कृष्ण के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा, उसके बाद मिठाई खाने को मिलती कि नहीं, रोज मिलती है, भगवान का प्रसाद मिलता है। तो अब देखिए कितना फायदा है, हम कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हमको लड्डू भी खाने को मिल रहा है और हमें कर्म फल भी नहीं लग रहा। कितना बढ़िया मार्ग है भक्ति का। हमको ऐसा नहीं कि हमको कहें बोलो मत, अब हम सब लोग शांत रहेंगे, भले आपको हो सकता हो क्लास तपस्या लग रही हो, लेकिन मैं बोलूं एक घंटे आके चुप बैठना है तो और बहुत बड़ी तपस्या लगेगी, हो सकता है। तो मैं खाली बोल रहा हूं, ये बोलने की प्रवृत्ति हमें नहीं रोकनी है, उसे भगवान की तरफ मोड़ देना है कि नहीं? ओके। वह कर्मों में निहित ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं जो कि त्याग का असली फल है, जैसा मैंने वर्णन किया। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए, ये लाइन जो है फिर सनिष्ठ भक्तों के लिए, जो लोग वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सात्विक भावना से कर्म फलों का त्याग करते हुए करते हैं तो धीरे धीरे वह ज्ञान पे स्थित होते हैं और वो समझते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, धीरे धीरे करके वो समझ पाते हैं। ठीक है, ओके। तात्पर्य हमारे दशरथी प्रभु पढ़िए, प्रभुपाद जी सीधे भक्ति के संबंध में समझाएंगे। यस,
जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता।
बहुत सिंपल सी टीका है। सन्यासी का अर्थ क्या है? सम्यक न्यास। सम्यक न्यास का मतलब, न्यास मतलब स्थित होना, सम्यक न्यास मतलब अपनी स्थिति में बढ़िया से स्थित होना। हमारी स्थिति क्या है? कृष्ण के दास के रूप में, तो कृष्ण के दास के रूप में कृष्ण का दास हूं, मेरा उद्देश्य मेरा अस्तित्व भी है कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, बस इस भावना से युक्त होकर के जो भजन कर रहा है उसको मुक्त होने में क्या दिक्कत है? अब ये भावना को धारण करना क्या मुश्किल है बताइए? कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेधावी छिन्न संशय होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए उसका, मेरा अस्तित्व क्या है। शास्त्र सुनकर के निष्काम भावना से कृष्ण का भजन करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए श्लोक बहुत बहुत हमारे लाभकारी है भक्ति में, नहीं? ओके। एक श्लोक हम और देखते हैं, ये लास्ट है। अब यहां भगवान बताएंगे, इसके बाद से शुरू होगा कि क्यों व्यक्ति को कर्म फल त्यागना चाहिए, क्यों कर्ता का भाव त्यागना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हम अकेले नहीं है। तो जरा देखिए, पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। बहुत इंटरेस्टिंग है। पंचतानि, पांच कारण होते हैं। महाबाहो कौन है यहाँ पे? अर्जुन। अरे आप तो बड़े तेज हो गए। कारणानि निबोधमे, यानी पांच कारण होते हैं, इनको नितराम बोध, इनको तुम में मुझसे समझो। लाइन समझ में आ गई? किसी कार्य को सिद्ध करने में, सर्व कर्मणाम सिद्धये, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए पांच कारण होते हैं। सिद्ध मतलब समझते हैं परिपक्व, पकाने के लिए, फलीभूत होने के लिए पांच चीजें होती हैं। जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं, लेट्स सपोज आप कोई भी सब्जी, मैं आपको पकड़ रहा हूँ एग्जाम्पल्स, इजीली समझ में आता है कुकिंग का। तो अगर आप मान लीजिए लौकी की सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लौकी। लौकी की सब्जी में लौकी तो होनी चाहिए ना, लौकी होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नमक होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, पांच तो गिन ही दिए, तो उसके बिना तो लौकी सब्जी आपकी सिद्ध नहीं होगी ना। उसी प्रकार से भगवान 14वें श्लोक से बताना चालू करेंगे, 14, 15, 16 में, कि कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें पांच कारण होते हैं, अकेले हम करने वाले नहीं है, इसीलिए कर्ता के भाव को त्यागना है। क्या कह रहे हैं वो हम कल आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं यहां पे रुकूंगा, 13 में रुकूंगा, कि भगवान उसके बाद 14, 15, 16 में बताएंगे पांच कारण क्या है। बहुत सुंदर है, उसके द्वारा हम अहंकार से मुक्त, बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कहां से इसको मालूम चल रहा है? सांख्य कृतांते प्रोक्तानी, प्रोक्तानी उक्त, प्रकृष्ट रूपेण उक्तानी, अच्छे से बोला गया है। कहां पे? सांख्य में, वेदांत में इसको बताया गया। ठीक है, ऐसा भगवान, देखिए भगवान बोल रहे हैं लेकिन भगवान स्वयं वेदांत को कोट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, मैं अपने मन से बोल रहा हूं, शास्त्र में ऐसा बताया गया कि पांच कारण होते हैं कर्म को करने के लिए। ठीक है, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। ठीक है, अब टीका को देखिएगा। अब प्रश्न यह है कि जो लोग कर्म करते हैं लेकिन फल को त्याग देते हैं तो उन्हें जगत में बंधन रूपी फल क्यों प्राप्त नहीं होता? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे भाई, कर्म करने से फल मिलता ही है, हमने ऐसा सुना है, तो जो लोग कर्म कर रहे हैं तो फल तो आ रहा है ना, फल तो दिख रहा है, तो फल का त्याग कर देने से उनको बंधन क्यों नहीं लग रहा? कर्म तो कर रहे हैं। बहुत सिंपल उत्तर आप जानते हो, एनालॉजी जानते हो, कि जो सैनिक गोली चलाता है बॉर्डर पे उसको मेडल मिलता है, और वही हजारों गोली चला सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई खर्चा नहीं है उसका, और वही सैनिक आकर के एक गोली अपने घर में चला दे तो काम खत्म, उसको पुलिस पकड़ लेगी। एकदम स्पष्ट आ रहा है कि नहीं, तो अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। उसी प्रकार से कैशियर बहुत सारे नोट गिनता है, इसको उतना देना है, उसको उतना लेना है, सब कुछ दिन भर कर रहा है, वही काम ही उसका, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उसने उस एक रुपया या 10 रुपया 20 रुपये ले लिया अपने लिए, उसमें से ये भावना होगी कि ये मेरा है, तो तुरंत उसको फिर नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दंड मिलेगा। तो यानी कि कोई भी कर्म अगर कृष्ण को समर्पित नहीं है तो उसका फल हमको जरूर भोगना ही पड़ेगा, अनिष्ट इष्ट मिश्र। समझ में आ रहा है? बहुत कठिन तो नहीं है ना? ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति कर्ता के भाव को त्यागता है। और भक्त लोग कैसे त्यागते हैं? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और उसके हृदय में यह श्रद्धा है कि भगवान ही मुख्य कर्ता हैं, करने वाले भगवान हैं। चाहे हम भजन भी कर रहे हैं, कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतने माला कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है हमारे भक्ति के लिए भी। या मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, या मैं इतना सेवा कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या बोलना चाहिए? भगवान ने मुझसे ये कराया। बल्कि भगवान भी अपने बारे में, मुचुकुंद महाराज जो कहते हैं, कंस का वध हुआ, हमारा समझाते हैं, वो नहीं बोलते कंस का वध मैंने किया, कंस का वध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, एज इफ भगवान करने वाले नहीं है, कोई उनसे करवा रहा है। तो भगवान ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, तो हमें कैसे करना चाहिए? हमें भी यह कहना चाहिए कि हमसे या इतनी पुस्तक वितरण हुए, इतना माला हो गया, हमने नहीं करवाया। आपको याद है वृंदावन चंद्र यहीं बैठ के बता रहे थे, कुछ लोग गोवर्धन की 2 परिक्रमा करते हैं, 3 करते हैं, कोई कोई 3 भी करते हैं, तो कहते हैं गिरिराज जी 3 परिक्रमा ले लेते हैं, कभी ये भावना नहीं होती कि हम करते हैं। याद आ रहा है आपने, प्रभु जी ने क्लास यहां पे दिया था। तो ये भावना भक्त को रखनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल है हमारे सीखने के लिए, ठीक है। और उसके हमने पढ़ लिया, आगे के 5 श्लोक इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। मेरे से गलती हो गई, 3 नहीं 5 श्लोक में वर्णन किया जाएगा कि वो 5 कारण क्या है। निबोध अर्थ है तुम मुझसे जानो, बोध कर समझते हैं, समझना, कुछ बोध होना, कि हर कार्य की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं। हे महाभाव, उधर देखिए, उधर देखिए, भगवान इसका प्रमाण दे रहे हैं। इसका वर्णन सांख्य शास्त्र में बताया गया है, अर्थात वेदांत सूत्र में। इसका वर्णन कैसे किया गया है? इसको निष्कर्ष के साथ प्रस्तुत किया गया है, कृतंते, कृत मतलब किया गया, अंतिम मतलब बिल्कुल परफेक्ट रूप से निष्कर्ष निकाल दिया गया है कि कोई भी कारण में, कोई भी कार्य को सिद्ध होने में, पूर्ण होने में 5 कारण होते ही हैं। वेदांत मतलब वेद, मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत, अब उसके बाद कोई वाद विवाद का कोई स्कोप नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, नहीं, सब खत्म कर दिया उन्होंने, सारे वेदों का सार प्रस्तुत कर दिया, वेदांत का अर्थ ही। वेदांत यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि परमात्मा ही सभी कार्यों के प्रणेता है, उन्होंने नहीं होना चाहिए, उन्हें अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, वह ब्रह्म जो अंदर होता है। ये तो अंतर आप समझ रहे हैं, लाइनों का अंत समझ रहे हैं ना, भगवान हृदय में है ब्रह्म के रूप में। इसे भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये श्लोक जानते हैं क्या अर्थ है? सभी के हृदय में मैं सन्निविष्ट, बढ़िया से रहता हूं, ठीक है, 15:15 में। और बाद में अन्य श्लोकों के द्वारा बताया गया है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सबके हृदय में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे, कैसे रह रहे हैं? ईश्वर के रूप में रह रहे हैं। ईश्वर का अर्थ क्या होता है दशरथी प्रभु? नहीं, वो भगवान का अर्थ है, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। तो भगवान सबके हृदय में है, हम सर क्या है? हमने 2 श्लोक क्या देखे इसमें, 2 श्लोक थे हमारे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में हूं, और क्या कह रहा है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सबको स्मृति दे रहा हूं और अपोहनम दे रहा हूं। और फिर क्या बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर के रूप में है, सबको नियंत्रित कर रहे, ठीक है। तो ये बात है, ये व्यक्ति समझता है कि कोई भी कार्य हो रहा है, मुझसे भी कोई कार्य हो रहा है और अन्य से भी जो कार्य हो रहा है, अंततोगत्वा उसकी प्रेरणा देने वाले भगवान है, मैं अकेला नहीं कर सकता। मैंने इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं टाइप किया, तो मेरी मदद कीजिए, आप भगवद गीता मेरे को दे सकते हैं जल्दीबाजी में। अब ये भी देखिए, भगवान के ही अरेंजमेंट है, मैंने सारा कुछ टाइप कर दिया, वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य उसको मैं जोड़ना भूल गया मैं, तो इसलिए आप मुझे डांटिएगा मत, ठीक है। तात्पर्य यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? ये तो अभी हमने चर्चा कर लिया। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्म के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जैक्टली श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्थ चाह मृति सन्निविष्ट, वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करा रहे हैं, कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो यानी कि जो कर्म बहुत स्पष्ट है कि यानी कि अपने अंदर से कर्ता का भाव त्याग करके भगवान के द्वारा निर्दिष्ट कर्म को व्यक्ति करता है, तो उसे कर्म फल नहीं लगता। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारा नियम बनाने वाले भगवान स्वयं है। बहुत सिंपल उत्तर है, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो तो करोगे तो ऐसा होगा, ये स्वयं भगवान ने नियम बनाया। छोटा सा उदाहरण मैं को दूंगा, जैसे मेरे को थोड़ा गले में दर्द था, तो मैंने अपने प्रभु जी को पूछा कि दवा बताइए, तो उन्हें बोल दिया ये दवा लो। मैं अपना रोग ठीक से बता नहीं सका, तो उन्होंने उसके अनुसार दवा दिया और मेरा रोग जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये रोग है, तो उन्हें दवा चेंज कर दी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों दवा तो ये देखने में एक जैसी लगती है, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि कौन सी दवा कैसे अप्लाई करोगे तो क्या प्रभाव होगा। जैसे वो दवा ली तुरंत आराम मिल गया, मेरा लॉजिक इसमें नहीं चल सकता। तो उसी प्रकार से वेदांत भगवान के द्वारा आया है, भगवान ने इस नियम को बनाया है कि अगर उनको कर्म फल समर्पित करते हैं तो व्यक्ति कोई आगे फल प्राप्त नहीं होगा, वह मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए इस संबंध में हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। अर्थ समझ रहे हैं? अगर वो फल भगवान को समर्पित हो गया तो आगे जाकर के हम उसके लिए कोई बंधन नहीं लगेगा। कोई प्रश्न करना चाहते हैं? ठीक है, शिल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।